लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे क्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव के रूप में हम अपने प्रेम करने वालों को अपने प्रेम की अभिव्यक्ति केवल उपहारों और कार्यों के माध्यम नहीं करते, अपितु हम प्रेम में उनका आलिंगन करते, उन्हें चुंबन देते और कोमलता में उनका स्नेहिल स्पर्श करते हैं। हम अपने प्रेम के शब्दों को अपने कार्य में अभिव्यक्त करते हैं, जो हमें एक दूसरे के निकट लाता और हमें प्रेमपूर्ण संबंध को हमारे प्रेमपूर्ण संबंध को और अधिक सुदृढ़ करता है। इस भांति अपनों के द्वारा प्रेम किए जाने का सुमधुर एहसास हमें अपने जीवन की राह में मजबूती और विश्वास के संग आगे बढ़ने को मदद करता है। हम अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने हेतु अपने में साहस और बल का अनुभव करते हैं। जीवन की मुसीबतों के कारण जीवन में आगे चलना जो हमारे लिए भारी क्रूस सा लगता है, अपने प्रेम करने वालों के कारण यह कठिन राह असहाय कठिनाइयों के बावजूद हमें जीवन जीने का एक सुखद और सुमधुर एहसास लाता है, क्योंकि हम अपने हृदय की गहराई में प्रेम की शक्ति से सदैव अपने को प्रेरित होता पाते हैं। श्रोताओ, कलिसियाई पूजन विधि वार्षिक कालचक्र के अनुसार आज बहुत से स्थानों में माता कलिसिया यीशु के पवित्रतम हृदय का महोत्सव मनाती है। यद्यपि बहुत से स्थानों में इसे इस सप्ताह के मध्य शुक्रवार को ही मनाया गया। यीशु के अति पवित्रतम हृदय आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों का आशय हमें मुक्तिदाता के अतुल्य प्रेम को देखने, उस पर चिंतन करते हुए उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का निमंत्रण देता है। आइए हम सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने में यह देखने, जानने और समझने का प्रयास करें कि पिता के पुत्र यीशु ख्रिस्त हमें किस हद तक अपने प्रेम का प्रमाण देते और उस प्रेम में बने रहने का आह्वान करते हैं।
वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर ही रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से यह निवेदन किया कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगे तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वे मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें यीशु के पवित्रतम हृदय से निकलने वाले रक्त और जल से शुद्ध और पवित्र करे, जिससे हम अपने को उनकी पवित्र इच्छा और योजना के अनुरूप उनकी सेवा के कार्यों में संलग्न करते हुए दूसरों के लिए सुंदर जीवन का कारण बन सकें। श्रोताओं, पवित्र हृदय के महोत्सव हेतु नबी होशैया के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के प्रेम का हाल प्रस्तुत करता है। जिस तरह एक माता पिता अपनी छोटी संतान को दुलार और प्यार करते हैं, ठीक उसी भांति ईश्वर हमें अपनी कोमल संतान की तरह अपने प्रेम का एहसास दिलाते हैं। उन्होंने अपनी चुनी हुई प्रजा को हाथ पकड़कर चलना सिखलाया और प्रेम में उन्हें मिस्र से निकाल लाया। जिस तरह माता पिता अपने संतान को गले से लगाते हैं, उसी भांति ईश्वर ने अपनी प्रजा को गले से लगाए रखा और उन्हें अपने कोमल स्नेह का एहसास दिलाया। उन्होंने झुककर उन्हें भोजन खिलाया और सदैव उन्हें अपने गले से लगाए रखा। चुनी हुई प्रजा का अपने प्रेम को ठुकराने पर भी वे उनसे क्रोध में विनाश नहीं करते, बल्कि उनकी देखरेख और उन्हें सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्रोताओ, नबी होशैया हमें ईश्वर के अतुल्य प्रेम का बखान करते हैं, जिसके अनुरूप ईश्वर हम में से प्रत्येक जन की चिंता करते और हमारा ख्याल रखते हैं। यह हमें ईश्वर के हृदय में व्याप्त प्रेम को देखने और एहसास करने का आह्वान करता है, जिसे पिता ने हमारे लिए अपने बेटे यीशु ख्रिस्त में प्रकट किया है। ईश्वर ने जीवन के हर चौराहे पर हमारे संग खड़ा होकर एक प्रेमी पिता की भांति हमारा साथ दिया है। यदि हम अपने जीवन का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि जीवन की कठिन परिस्थितियों और घटनाओं में ईश्वर ने विभिन्न रूपों में विभिन्न लोगों के द्वारा हमारी सुधि ली है। हमारे जीवन के हताशी और निराशा भरे क्षणों में उन्होंने हाथ पकड़कर हमें आगे ले चला है। हमारी सफलताओं में उन्होंने हमारे दोस्त, मित्रों और सहयोगियों के रूप में हमारी खुशी में शामिल होते हुए हमें अपने प्रेम से भर दिया है। श्रोताओं, वहीं एफेसियों के नाम अपने पत्र में संत पौलुस हमें कहते हैं कि पिता ने अपने गुप्त रहस्य को बेटे यीशु ख्रिस्त में प्रकट किया है, जो हमारे लिए अपार कृपा निधि का सुसमाचार और मुक्ति विधान का रहस्य है। संत पौलुस हमारे लिए विनय करते हैं कि हमें ईश्वर का आत्मा प्राप्त हो, जिससे हम अपने अभियंतर में अपने विश्वास के कारण ईश्वरीय प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को जान सकें और समझ सकें। इस भांति ईश्वरीय प्रेम का ज्ञान हमें उनकी पूर्णता तक पहुंचाएगा और हम अपने में परिपूर्ण हो जाएंगे। श्रोताओं, ईश्वर का प्रेम हमारे लिए सूली पर अपनी बाहों को फैलाए टंगा गया, जिसका हृदय हमारे प्रेम के कारण बेधित हुआ, जिसकी ओर निगाहें फेरने हेतु हम सभी बुलाए जाते हैं। आज का सुसमाचार यीशु के हृदय को भाले से छेदित किए जाने का हाल प्रस्तुत करता है, जहां से रक्त और पानी की बूंदें निकल पड़ी। यहां तीन चीजें हमें यीशु के शर्तहीन बेमिसाल प्रेम को प्रकट करते हैं। पहला, उनकी खुली हुई बाहें जो हमारा आलिंगन करना चाहती हैं। वे हमारे लिए सदैव खुले हैं, चाहे हम अपने पापों के कारण उनसे कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं। वे हमारे लिए हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे। दूसरा, हमारे पापों के कारण यीशु का बेधित हृदय, यह हमारे लिए खोला गया है, जहां यीशु हमें सदैव ग्रहण करने को लालायित रहते हैं। वे हमारे लिए अपने हृदय को कभी बंद नहीं करेंगे। तीसरा, यीशु के हृदय से निकला रक्त और जल, ये दोनों हमारे लिए जीवन की निशानी को व्यक्त करते हैं। अपने हृदय से बहते रक्त और जल से यीशु हमारे पापों को सदैव धोते और हमें शुद्ध करते हैं। अपनी मृत्यु के उपरांत भी उनके शरीर से निकला अनमोल रक्त और जल हमें इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाता है कि उनकी ओर आने वाले कभी अपने में हताश और निराश नहीं होंगे, क्योंकि मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के हृदय से जीवन का स्रोत सदैव सारी मानवता के लिए बहता रहता है। आइए हम प्रेम के सागर पवित्रतम हृदय से निवेदन करें कि हम उनके द्वारा दिए गए अनमोल दानों के महत्व को समझ सकें और अपने पापों का परित्याग कर उनकी ओर फिर सकें, जिससे हम अपने में नवीनता को प्राप्त कर दूसरों के लिए नए जीवन का स्रोत बन सकें।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बाल श्रम नहीं दिवस पर एक ट्वीट प्रसिद्ध कर बच्चों के विकास, स्वास्थ्य एवं शांति को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने 12 जून को अपने ट्वीट संदेश में लिखा, बच्चे मानव परिवार के भविष्य हैं। हम सभी से उम्मीद की जाती है कि हम उनके विकास, स्वास्थ्य एवं शांति को बढ़ावा दें। लोक धर्मी परिवार एवं जीवन के लिए गठित परम धम पीठे परिषद के लिए पोप फ्रांसिस द्वारा अनुमोदित ज्ञप्ति विश्वासियों के अंतर्राष्ट्रीय संघों के नेताओं के जनादेश की लंबाई को विनियमित करेगा। नए प्रावधानों का मकसद है यह सुनिश्चित करना कि उन संघों में अधिकारी मिलन की सेवा करें और व्यक्तिवाद एवं दुर्व्यवहार के जोखिमों को रोकें। लोक धर्मी परिवार एवं जीवन के लिए गठित परम धम पीठे परिषद ने एक आज्ञाप्ति जारी की है जो विश्वासों के अंतर्राष्ट्रीय संघों में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक निकाय की चुनाव प्रक्रिया में प्रशासनिक जनादेश की अवधि एवं संख्या तथा सदस्यों की आवश्यक प्रतिनिधित्व को नियंत्रण करेगी। उन निर्देशों को संत पापा फ्रांसिस ने अनुमोदन दिया है जिसको शुक्रवार को प्रकाशित किया गया और यह 3 माह में लागू होगा। यह विश्वासों के सभी संघों एवं परिषद द्वारा मंजूरी प्राप्त या चयनित संस्था को एक साथ लाएगा। प्रशासनिक पदों पर आज्ञाप्ति का उद्देश्य है एक स्वस्थ बदलाव को प्रोत्साहन देना ताकि अधिकार का प्रयोग सेवा के रूप में किया जा सके और उसे कलीसियाई एकता में व्यक्त किया जा सके। पेरू के धर्माध्यक्ष इवो बाल्दी गपूरी का निधन 11 जून को कोविड-19 के कारण हुआ। वे पेरू के पहले धर्माध्यक्ष हैं जिनकी मृत्यु कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण हुई है। पेरू के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने एक विज्ञप्ति जारी कर सभी विश्वासियों से अपील की है कि वे धर्माध्यक्ष बाल्दी की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें कि हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त उनके परिवार एवं हुआरी धर्म प्रांत के सभी विश्वासियों को इस कठिन समय में शांति प्रदान करें। धर्माध्यक्षों ने विश्वासियों को सूचित किया है कि वे फेसबुक के माध्यम से अंतिम संस्कार के मिस्सा बलिदान में वर्चुअल रूप से भाग ले सकते हैं। धर्माध्यक्ष इवो बाल्दी गबूरी का जन्म इटली के चिता दी कस्तेल्लो में 27 मार्च 1947 को हुआ था। उन्होंने दर्शन शास्त्र एवं ई शास्त्र की पढ़ाई असीसी की सेमिनरी से की थी। 9 अक्टूबर 1971 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ था। उसके बाद 1975 में वे पेरू चले गए थे। 14 सितंबर 1999 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें हुआराज धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया था। पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल बेन्यामिनो स्टेला के त्याग पत्र को स्वीकार करते हुए उनके स्थान पर कोरियाई धर्माध्यक्ष लाजरो यू हियांग सिक को याचकों के परमधम पीठ धर्म संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। 1951 में जन्मे और डाइजन धर्म प्रांत के लिए अभिषिक्त धर्माध्यक्ष लाजरो 2003 में अपने ही धर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष बने और 2 साल बाद धर्माध्यक्ष की पूरी जिम्मेदारी ली। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष कोरियाई कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन की शांति समिति के अध्यक्ष थे और 4 बार उत्तरी कोरिया की यात्रा कर चुके हैं। याचकों के लिए विश्वव्यापी कलीसिया में एक कोरियाई धर्माध्यक्ष की नियुक्ति कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले के प्रोपागांडा फीदे के शीर्ष के रूप में नियुक्ति के बाद हुई है, जो पोप फ्रांसिस के एशियाई कलीसिया की ओर ध्यान देने का संकेत है।
संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 12 जून को वाटिकन में गबोन के राजदूत श्री एरिक चेसनेल का स्वागत किया और उनका प्रत्यय पत्र स्वीकार किया। श्री एरिक चेसनेल का जन्म 1952 में हुआ था। उन्होंने पेरिस यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और कानून में लाइसेंसिएट, उच्च लेखा अध्ययन DECS में डिप्लोमा, पेरिस यूनिवर्सिटी में वित्त में DEA और अर्थशास्त्र एवं व्यवसाय प्रबंधन विकल्प में मास्टर की डिग्री हासिल की है। उन्होंने संचार, सामाजिक, कानून, अर्थशास्त्र, वित्त के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि क्षेत्रों में काम किया है। राजनीतिक स्तर पर उन्होंने इन पदों को संभाला, विशेष सलाहकार राष्ट्रपति मिशन के प्रभारी, प्रेसिडेंसी के उप महासचिव, राष्ट्रपति सी ओमार बोंगो ओडिम्बा के निजी सलाहकार और फ्रांस के गिबोन दूतावास में राष्ट्रपति के सलाहकार। राजदूत श्री एरिक फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन भाषाएं जानते हैं और संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्ष कार्डिनल जीन क्लाउड होलरिक से मुलाकात की। बैठक के बाद एक साक्षात्कार में वाटिकन न्यूज से बात करते हुए कार्डिनल होलरिक ने यूरोप के लिए संत पापा के प्रेम और यूरोपीय संघ के कार्यकलापों के बारे में उनके गहन ज्ञान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संत पापा यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षों को यूरोप के लिए काम करना जारी रखने की आशा देना कभी बंद नहीं करते हैं। सभी राजनेताओं के साथ बातचीत में यूरोप को लोक लुभावनवाद की जाल में नहीं पड़ने देने की चेतावनी देते हैं। कार्डिनल ने COVID-19 टीकों के लिए समान पहुंच प्रदान करने की चुनौती के बारे में भी बताया और राजनेताओं एवं अमीर देशों के नेताओं को दूसरों के साथ साझा करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने बताया कि मदद करना यूरोप के स्वार्थ में है, क्योंकि यूरोप के नागरिक अब तक सुरक्षित नहीं हैं, जब तक कि वैश्विक गांव में हर कोई सुरक्षित नहीं है। COVID-19 के बाद आर्थिक सुधार के लिए वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में कार्डिनल होलरिक ने सुधार के प्रयासों में राजनीति के महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, विशेष रूप से एक पारिस्थितिक संक्रमण लाने में जो अभिन्न पारिस्थितिकी पर केंद्रित है। उन्होंने संत पापा के हृदय परिवर्तन के आह्वान को दोहराया, मसीह में परिवर्तन जो हमें अपने सामान्य घर में इस तरह से रहने के लिए प्रोत्साहित करता है कि सभी लोग यहाँ रह सकें और खुश रह सकें। उधर 75 वर्षीय सिस्टर जोस्पीना बर्टी को ईरान वीजा नवीनीकरण से वंचित कर दिया गया है। वे इटली लौटने के लिए मजबूर हैं। वे 26 साल तक ईरान के तरबीज के कोढ़ केंद्र में काम कर चुकी हैं और अब डॉटर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट विंसेंट डी पॉल धर्म समाज के एक कॉन्वेंट इम्फान में रहती हैं। उन्हें आने वाले दिनों में ईरान छोड़ना होगा। उनके जाने से उनकी साथी सिस्टर 77 वर्षीय ऑस्ट्रियाई धर्म बहन फबियोला वीस के लिए मुश्किल हो जाएगा। दोनों धर्म बहने जिन्होंने धार्मिक या जातीय भेद के बिना देश के बीमारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन्हें 1937 में बने धर्म समाज के घर को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगी। नमस्कार।